Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aur Prithu jaise raja huye to subrishti hui. जहां दुर्भिक्ष था वहां सुवृष्टि हुई। हां, भारत के किसान बहुत इस समय खुशी हैं भाई, प्रसन्न हैं। चारों तरफ बारिश है, लेकिन सौराष्ट्र में नहीं हुई कहते हैं।
हो गई?
हां, जामनगर में हो गई। कल भावनगर से फोन आया था शाम को, बोले महाराज अभी तक बारिश नहीं हुई है। हमने कहा बारिश को कह देंगे जा भाई उधर भी, हमारे कहने से यदि हो जाए तो क्यों पक्षपात करता है, है? जहां खेती करना नहीं था तो वहां बिना तांडव कर दिया तूने, जहां किसान प्रतीक्षा कर रहा है वहां क्यों नहीं जाते हो, जाओ भाई। तो हमने कहा ठीक है, प्रार्थना करेंगे, भेजेंगे तुमको एक दो दिन में। चलो राजकोट तक पहुंच गए, जामनगर तक पहुंच गया, तो भावनगर भी एक दो दिन में पहुंचेगा। तो उन लोगों को कहना चाहिए कि थोड़ा सा आमरस और श्रीखंड पूड़ी पका के रखो, आएगा वो। हाँ, फजे तो भी बना के रख देना भाई, उसको फजे तो बहुत पसंद है, जाने दो। तो सुवृष्टि हुई, पृथु जैसे ही राजा बने सुवृष्टि हुई, जब चोर थे वो सब शांत हो गए। पृथु भी राज्य की चारों तरफ प्रशंसा हुई है, सब आनंद में रहने लग रहे हैं, मान लो कि साक्षात स्वर्ग उतर आया है धरती में, ऐसा राज्य हो गया है। तो पृथु जैसे राज्य का राजा आज तक इतिहास में पृथ्वी में हुआ नहीं। जोते गए है, देख लो पृथ्वी अपने आप ही अन्न देने लग गई। धर्मों में लगभग उसी की उपमा दे रहे हैं यहां महाराज। जब आप इस मानस सिंहासन में हृत पुंडरी का राज्य में जब आप निवास नहीं किया था, तब तक तो इसी प्रकार का दुर्भिक्ष था महाराज। सुबह शाम दो टाइम रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल था, मिलता नहीं था। अब आप आके मानस हृदय में राज्य करने लग गए तो खाने की चीज चारों तरफ से आने लग गई है। हमको जब बम्बई आते हैं तो यहां के जितने भी भक्त हैं, विशेष करके माताएं हैं, चारों तरफ से लाती हैं खाने की चीज। कोई कहते हैं ये महाराज ये बहुत अच्छा है, हाँ फाफड़े लेके आ गई, कोई खाखरे लेके आ गई, कोई गांठिया लेके आ गई, कोई क्या पापड़ पौवा लेके आ गई, क्या नाम रखा है पापड़ पौवा, और कई कोई लेके आ गई सेव ममरा, ये सब चीज महाराज ये खाइए ये खाइए ये खाइए, सभी चीज लेके आते हैं। तो कोई एक भक्त कहते हैं महाराज आपका तो मौज है, क्या मौज है, चारों तरफ खाने की कोई कमी नहीं है आपके यहां, क्या बढ़िया बढ़िया चीज आ रहा है। हमने कहा भाई जब शुरू शुरू में साधु बने थे तो बड़ा मुश्किल था, है? एक समय भरपेट सातु भी खाने को नहीं मिलता था, भिक्षा मांग मांग कर भटक भटक कर खाते थे। काशी में जब रहते थे पढ़ते थे विद्या अध्ययन करते थे तो अन्न छत्र थे, तो निश्चित अन्न छत्र वहां जाकर खाना पड़ता था, मांग कर खाना पड़ता था, ऐसे ही ना देते थे। एक घंटा कीर्तन कराते थे, मारवाड़ी अन्न छत्र था, हाँ गदौलिया के चौक में आज भी चल रहा है मारवाड़ियों का, हाँ वो अन्न छत्र। लेकिन शर्त है कि एक घंटा कीर्तन किए बिना खाना नहीं देवे, तो भोजन के लिए ही कीर्तन करना पड़ता था। सारी पापड़ बेल चुके हो, और इस तरह विद्या अध्ययन की और इस तरह शिव जी की उपासना की काशी विश्वनाथ का, इसके बावजूद भी नियमित हम जल चढ़ाते थे, स्नान करते थे और दर्शन किया करते थे। ये साधना ही का प्रतिफल यह है कि हृदय में आकर भगवान शिव का जो राज्य हो गया, निवास हो गया, उनकी कृपा से ये फाफड़े फुफड़े पापड़ पुपड़ अपने आप ही आ रहा है। अब कहां दुर्भिक्ष, क्या आनंद हो रहा है, बेन का राज्य थोड़ी है, अब अब किसका राज्य है? हाँ, ये देखो अब तो शिव जी का राज्य है, सिंहासन में, मानस सिंहासन में तो अब तो भगवान विराजमान है, तो अब क्या दुर्भिक्ष होगा बोलो? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, इस पृथ्वी में कोई भी प्राणी यदि भगवान का भक्त और भजन करता है तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर रहे, उसको भोजन की कमी नहीं होगी, भूख निवृत्ति के लिए भोजन की कमी नहीं होगी, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की अन्न की व्यवस्था हो जाएगी। आपने पेपर पढ़ा है ना, केदारनाथ में जो अभी जो विप्लव हुआ है, हैं? वहां यात्री ने एक वर्णन किया है कि यात्री ने, हैं? पत्ते तोड़ तोड़कर वही चबा चबा कर खा के 5 दिन तक गुजारा किया है, पढ़ा है ना पत्रिका में। तब क्या कमी है, पत्ते तो है ना कम से कम, भूख निवृत्ति तो हो ही रही, प्राण तो रक्षा तो हो ही रही है, भगवान के भक्त थे इसलिए भूख निवृत्ति हो गई, व्यवस्था हो गई, खाने लायक पत्ता वहां कम से कम मिल तो गया, अन्यथा वो बिच्छू घास मिलता उनको तो फिर क्या करते, जीते। एक बिच्छू घास होता है, तुम लोगों को अनुभव नहीं होगा, बम्बैया को क्या पता बिच्छू घास क्या होती है, वो ऐसा डंस मारता है, अड़ता है कि फफूंदे निकलते हैं, 3 दिन तक वो जलन होता है, उसका नाम ही बिच्छू घास है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था है, खाकर प्राण रक्षा करने के लिए उनको पत्ते तो मिल गए ना, हमारी तो आदत बिगड़ गई भाई, उन्हें पत्ते खाकर यदि पशु पक्षी और ये सब प्राण रक्षा कर सकते हैं तो हम क्यों रक्षा नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमारी आदत बिगड़ गई है। तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य भगवान के आश्रय में रहकर भगवान का भजन करता है तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाए वो भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि गीता में भी तो कहा योगक्षेम वहाम्यम अनन्या चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योगा, प्राप्त वस्तु की संरक्षण क्षेम, अनन्य भक्तों को तो तुम उसके भगवान का स्मरण न करके औरों का स्मरण करने लग जाओ तो फिर जिसका स्मरण कर रहे हो वही योगक्षेम करे, हम क्यों करें करके बैठ जाते हैं भगवान है? तो या उसी से उपमा पृथु राजा जैसे राज्य हुआ सुव्यवस्थित, तो क्या हुआ बोले, धर्मो में चतुरंग्रिक, 4 अंगों वाला धर्म है। भागवत में तो आपने सुना है ना, धर्म का प्रतीक बैल है ना, भागवत में भागवत में बैल को धर्म का प्रतीक माना गया और धर्म के बैल के 4 चरण होते हैं, लेकिन भागवत में जो बैल खड़ा था वो 1 चरण में खड़ा था और 3 चरण उसके नष्ट हो चुके थे। परीक्षित ने देखा और पूछा, तुम्हारे बाकी चरण क्या हुआ? बोले महाराज, तुम राजा बनने से पहले, तुम राजा नहीं बने थे, राजा बनने से पहले कली आकर मेरे बाकी 3 पांव को तोड़ चुका है। परीक्षित ने कहा कि अच्छा, उसके ये हिम्मत, अब तो मैं राजा हो गया हूं ना, उस तुम्हारे 3 चरणों को तोड़ने वाला उस कली को अभी मैं दंडित करता हूं। धनुष बाण निकाला और कली को लक्ष्य करके बाण का संधान किया, कली को यह पता चला कि यह परीक्षित मार डालेगा, अब तो उसी के शरण में जाना पड़ेगा। तुरंत परीक्षित के सामने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो। मैं क्यों क्षमा करें, तूने ये बैल के 3 चरण क्यों तोड़ के दिया? बोले महाराज, हम क्या करें, कोई शासन करने वाला ढंग का तो था नहीं, हमारी मर्जी, आपको पता ही है कि हम कली हैं, जो भी करें हम ही तो मालिक हैं, अब आप आ गए सुशासन करने वाले तो, लेकिन अब 3 पांव टूट चुके हैं। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य से तू निकल के चला जा भाई, तब तो मैं जीवन दान दूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। बोले मुझे मत मारो, मैं आपका हित भी करूंगा, सभी का हित भी करूंगा, हाँ मेरी एक विशेषता है, हित भी करूंगा और हित भी करूंगा। हित ये करूंगा कि यदि उसकी वृत्ति ठीक है तो उसका हित होगा, वृत्ति खराब होगी तो उसका अहित होगा। मेरी विशेषता है, मेरे रहते हुए मेरी उपस्थिति में दुराचार व्यभिचार ये सब भी बहुत ही होंगे और उसका प्रतिफल उसको पाप से उसका जीवन नष्ट होगा, बर्बाद होगा। लेकिन मेरी उपस्थिति में कोई भगवान का भजन करता है तो वो ही उसके उद्धार के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ये मेरी विशेषता है, यदि मैं न रहूं मुझे तुम मार दोगे तो अपने जीवन के उद्धार के लिए सभी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, चारों अंगों की आवश्यकता पड़ेगी। एक अंग इसलिए बचा है कि बस इसी से उद्धार होगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, तुलसीदास जी ने कहा। कलौ केशव कीर्तनाथ, बस मेरी उपस्थिति में यदि परमात्मा का भाव से संकीर्तन करता है उतने संकीर्तन मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। यदि मुझे मार दोगे, मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी तो केवल संकीर्तन से कल्याण नहीं होगा, तप भी करना पड़ेगा। सत्य दया तपो शौचम धर्म के चार अंग हैं। महाराज आपके इस सिंहासन में आकर इस राज्य में जब आप राजा के रूप में विराजमान हुए तो ये अपने आप ही चारों अंग, धर्म के चारों अंग पूर्ण रूप में विकसित होने लग गए। धर्मो में चतुरंग्रिका सुचरिता पापम बिना संगत, और आपके सिंहासन में राज्य करते ही पाप बिना संगत, पाप अपने आप ही नष्ट होने लग गए। पृथ्वी जैसे ही राजा बन गए पृथ्वी के, वहां दुष्टा दुराचार व्यभिचार पाप कर्म हमेशा के लिए खत्म हो गए उनके राज्य में। क्या है वह दुष्ट? काम क्रोध मदादयो विगलिता, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य आदि षड रिपु, ये छह शत्रु हैं। आप जब तक इस सिंहासन में आकर राज्य में सिंहासन में आकर विराजमान नहीं हुए थे तब तक इन्हीं लोगों का आतंक था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन्हीं का आतंक था। अब ये नहीं, कहां चले गए पता ही नहीं चलता है भाई। हृदय में शिव विराजमान हो और तुम्हारे कामना जगे संभव नहीं है, क्योंकि शिव का नाम क्या है? स्मर हर है, और काम का नाम क्या है? स्मर। और क्योंकि शिव यहां रहते हैं तो फिर उनको देखते ही काम भाग जाता है, क्रोध भाग जाता है, लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब भाग जाते हैं। मेरे जीवन से अब ये सब दूर हो गए महाराज, क्योंकि अब सुशासन चालू हो गया ना आपकी, आपके हृदय रूपी सिंहासन देह रूपी राज्य में हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान होते ही काम क्रोध मद दयो विगलिता काला सुखा विस्कृता। यहां तक कि समय भी सुख का आविष्कार करता हो गया, काल माने समय, समय सब अनुकूल होने लग गया महाराज। और आप आकर जब बैठे नहीं थे तब तक तो समय प्रतिकूल हुआ करता था, काल दुख को उत्पन्न करता था, अशांति को उत्पन्न करता था, विक्षेप को उत्पन्न करता था, देख लो ना। ज्ञानानंद महौषधि सुफलिता, खेत में जब सुशासन हो गए सुविक्ष हो गया वृष्टि हुई तो किसान के खेत में फल लगने लग गए, चारों तरफ पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभ रहिता ब्राह्मणा संत निर्भया काले वर्षंतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी। परमात्मा से यही तो प्रार्थना हम लोग करते हैं कि नहीं? ये तो राष्ट्रीयता, यही तो है राष्ट्रीय प्रार्थना है ये है? काले वर्षंतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयम क्षोभ रहिता ब्राह्मणा संत निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा संतु पुत्रिणा संतु पौत्रिणा निर्धना धनम आपनोति। वाह क्या सुंदर, क्या सुंदर प्रार्थना है। तो ये तब होगा जब शिव जी का राज्य होगा, शिव जी का सुशासन चलेगा। ज्ञानानंद महौषधि सुफलिता, ज्ञान रूपी ज्ञानानंद, ज्ञान ही है आनंद का हेतु, तो ज्ञानानंद रूपी फल सुफलितम, सुष्टुफलितम, सुफलितम, श्रवण किया हुआ वेदांत ब्रह्म विद्या वो फलीभूत होने लग रहा है। हम लोगों के जीवन में वेदांत ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हृदय में शिव जी का शासन नहीं है। जीवन में तो काम क्रोधों का शासन है, तो इसके कारण से ब्रह्म विद्या सुफलित नहीं हो रहा है। जो ब्रह्म विद्या सुफलित हुआ, लक्षण क्या है? दैवात लब्धेन संतुष्ट आत्मवित चरणार्चनम, प्रारब्ध से जो प्राप्त है उसी में संतोष होना, यही ज्ञान सुफलित होने का लक्षण है। हाँ, आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में आत्मवत व्यवहार करो, अपने जैसे और मुझसे जैसा व्यवहार करें ये अपेक्षा रखते हो तो फिर तुम दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित अयम ही परमो धर्म, ये ज्ञान सुफलित हुआ हुआ लक्षण है। हाँ, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्प्रिय, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। गीता में द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञा लक्षण में ज्ञान सुफलित हुए का लक्षण बता दिया है। जिसके जीवन में ऐसे भाव है मानो कि उसके जीवन में ज्ञान सुफलित हुआ, और ज्ञान सुफलित उसी के जीवन में होगा जिसके जीवन भगवान शिव रूपी राजा से सुशासित होगा। तब फिर धर्म चतुरंग ही होगा, काम क्रोध आदि पलायन हो जाएंगे, समय सुखाविष्कृता हो जाएगा, अनुकूल फल देने वाला। ज्ञानानंद बहुषधि सुफलिता कैवल्य, कौन सा फल देगा? कैवल्य न रूपी, केवल रूपी अद्वैत स्वरूप फल सुफलित होगा। हे नाथ कैवल्य नाथ सदा मान्य, आप सर्व मान्य हैं। ऐसे राजा तो सभी को चाहिए कि नहीं, बोलो। मान्य मानस पुंडरीक नगरे, मानस हृदय रूपी कमल, पुंडरीक माने कमल, हृदय रूपी कमल में और ईश्वरी रूपी नगर में राजा वतन से स्थिते, आपके राजा के रूप में स्थित हो जाने पर ये सब भाव आपके जीवन में अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। अब एक किसान के रूप में शंकराचार्य जी उस श्लोक में एक राजा सुशासन करने वाला राजा के रूप में उपमित किया, तब ये 40वें श्लोक में एक किसान के रूप में, मेहनती कुशल किसान के रूप में भगवान शिव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दीयंत्रे न घटो बचो घटे न कविता, कुल्योपकुल्या क्रमेर आनीतेश्च सदा शिवस्य चरितां, भो राशि दिव्यामृत हृत केदार युता च भक्ति कलमा, साफल्य मातन्वते दुर्भिक्षान मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीति कुतः। हे विश्वेश, विश्व का एकमात्र ईश, विश्वेश विश्वम ईशते इति विश्वेश, शासन करने वाले विश्वेश, विश्वनाथ लोकनाथ है, सारे संपत्ति का एकमात्र, विश्व के प्राणियों का एकमात्र आप नाथ हैं। जब तक आपका आश्रय नहीं मिलेगा तब तक सारे जीव अनाथ ही रहेंगे। बाप और मां न हो तो क्या कहते हो, ये अनाथ बालक है, कहते हो कि नहीं? और शिवजी न हो तो सब जीव प्राण अनाथ है भाई, तो इसलिए आप ही सारे विश्व के नाथ हैं। हे विश्वेश विश्वनाथ भगवन, छह प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न भगवन, षड्विध भगम अस्य अस्ति इति भगवन, धनम अस्य अस्ति इति धनवान, जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास गुण होता है उसको गुणवान कहते हैं, इसी तरह जिसके पास छह भग पूर्ण रूप में विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। छह भग क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋण। समग्र ऐश्वर्य, समग्रस्य, समग्र धर्म, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य और समग्र श्री कांति जिसके अधीन में हो, ये छह को भग कहते हैं और उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं जिसके अधीन में रहो। धीयंत्रेण बचो घटेन कविथा कुल्लेन। मैं एक किसान हूं महाराज, शंकराचार्य जी अपने को एक किसान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। किसान अपने खेती को उर्वरा बनाता है, अच्छे फसल के लिए खेतान मेहनत करता है और अपने खेती को बहुत उर्वरा बनाता है। उर्वरा का अर्थ होता है खूब जुताई करता है और खूब खाद आदि डालता है, यूरिया, यूरिया नहीं वो केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक गाय का भैंस का वो खाद डालता है, और इसीलिए जितनी खाद जमीन में रहेगा और जितनी मिट्टी नरम होगी तो उतना ही जमीन को उर्वरा कहते हैं। उर्वरा शब्द का अर्थ होता है बहुत सद्य और खूब अच्छा फसल देने वाली योग्य जमीन को उर्वरा जमीन कहते हैं। मरुभूमि में फसल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां खाद नहीं है, वहां के पानी में वो चीज नहीं है, वहां के मिट्टी में वो चीज नहीं है, और उसको उस योग्य बनाने के लिए खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत, खूब खाद डालना पड़ेगा,